जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Baladi, Jaya Subhadra, Jaya Jaya Sudarshan, Jaya Jagannatha, Jaya Baladi, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath Swami, Nayan Pathagami, Nayan Pathagami Bhavatume. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gaur Hari Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivraj Kacharya Stotar Sat. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivraj Kacharya Stotar Sat. His Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. His Kaun BBT Founder Acharya, Savior of the Whole World, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. His Kaun Vartman Acharya, Vrind Ki Jai, Guru Parampara Ki Jai. रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नेताय श्री श्री कृष्ण बल्लम श्रीमद भागवत महापुराण की जय। नेताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द Assembled devotees Hare Krishna, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories, all glories, all glories, Guru and Gauranga Jagatguru Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15। अध्याय का शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश और आज का श्लोक क्रमांक है 34। एवं भियस्तश्चित्तम् काले नालपि यसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् याति अनिन्धन बहुं एवं भियस्तश्चित्तम् एवं भियस्तश्चित्तम् काले नाल्पियसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् यात्यनिन्धन् वहन्निव एवं भियस्यतश्चित्तम् कालेनाल्पियसायते अनीशं तस्य निर्वाणम् यात्यनिन्धन् वहन्निव।
Thank you.
वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य एवं इस प्रकार अभ्यस्यत इस योग पद्धति का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का चित्तम हृदय कालेन कालांतर में अल्पियसा तुरंत ही यत्ते योगाभ्यासी व्यक्ति का अनिशम बिना रुके निरंतर तस्य उसका निर्वाणम समस्त भौतिक कल्मस्य शुद्धि याति प्राप्त करता है अनिंधन बिना लपट या धुएं के वहन्निवत आग की तरह। जब योगी इस प्रकार नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता। जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। तात्पर्य, निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का द्योतक होता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को इंद्रियां होती है और यदि ये इंद्रियां कार्य करना बंद कर दें तो जीव जीव न रहे, वह जड़ हो जाए, पत्थर या काष्ठ की तरह। ऐसा संभव नहीं है। जीवित होने के कारण जीव नित्य तथा चेतन है। जो व्यक्ति बहुत प्रबुद्ध नहीं है उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने हेतु योगाभ्यास करने हेतु कहा जाता है। किंतु यदि कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है। इस शांति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 5:29 में हुआ है। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। यदि कोई यह समझ ले कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता, हर वस्तु के परम स्वामी तथा सबके परम मित्र हैं तो उसे शांति प्राप्त होती है और वह भौतिक क्षोभ से मुक्त हो जाता है। किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता है उसके लिए योगाभ्यास करने की संस्तुति की गई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी పాశ్చాత్యదేశతారిణీ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధూభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. గురువే గౌరచంద్రాయ రాధికాయే తదాలయే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. మహాభావ స్వరూపా త్వం కృష్ణ ప్రియ బరీయసి ప్రేమ భక్తి ప్రదే దేవీ రాధికే త్వం నమామ్యహం. అజానులంబిత భుజో కనికావదాతో సంకీర్తనే పితరో కమలాయతాక్షో విశ్వంభరో ద్విజవరో యుగధర్మపాలో వందే జగత్ ప్రియకరో కరుణావతారో. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ. సర్వప్రథమ శ్రీ శ్రీ రాధా శ్యామ సుందర గోర నితాయ శ్రీ శ్రీ కృష్ణ బలరామ యహాం పే ఉపస్థిత జితనే భీ వైష్ణవ ఔర్ వైష్ణవీ గణ హై సభీ కే శ్రీ చరణార్విందం మే సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా హూం ఔర్ ఉన్సే కృపా కీ యాచనా కర్తా హూం. యే జో శ్రీమద్ భాగవతం జో ముక్త జీవాత్మాఓ కీ వార్తా హై ఉన్కే బారే మే ఆజ్ మేరే లియే తో యే పరమ సౌభాగ్య కా యే అవసర హై జో ఇన్కే కుచ్ చర్చా కర్నే కా యే అవసర ప్రాప్త హువా హై. లేకిన్ ముజ్మే ఐసీ కోయి యోగ్యతా నహీ జో శ్రీమద్ భాగవతం పే మే ఇస్కో దోహరా భీ సకూ ఆచార్యో కీ వాణీ కో. ఇస్లియే ఆప్ సబ్ వైష్ణవగణ వైష్ణవీగణ కృపా కరియే తాకి మేరే ముఖ సే ఉసీ వాణీ కా ప్రయోగ హో జో సాధు గురు శాస్త్ర కే ద్వారా సమ్మత హో. హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్ భక్త ఇస్ ప్రసంగ సే బహుత్ అచ్చీ తరీకే సే సమజ రహే హై క్యోంకి యే ఇస్ అధ్యాయ యే జో అస్కంద హై సమాప్తి కే కగార్ పే హై తో యే బహుత్ హీ సుందర ప్రసంగ చల్ రహా హై ఔర్ ఇస్ అస్కంద కా జో సబ్సే అంతిమ అధ్యాయ హై ఉస్మే ఏక్ గృహస్థ యా సన్యాసియో కే లియే జో జీవన్ కీ చరమోత్ కక్ష జో లక్ష్య హోతా హై వ్యక్తి కా ఉస్కో ప్రాప్త కైసే కియా జాయ్ ఉత్తమ లక్ష్య కో ఇస్కే బారే మే ఏక్ ఏక్ చీజ్ బతాయా గయా హై. అభీ జో యే ప్రసంగ చల్ రహా హై ఆజ్ కా 34 నంబర్ శ్లోక హై తో భగవాన్ నారద్ జీ యహాం పర్ మే యే ప్రసంగ బతా రహే యే 30 సే లేకర్ కే అగ్లే 40 నంబర్ శ్లోక తక్ ఏక్ హీ ప్రసంగ పే చర్చా హై. 4 శ్లోక తో బీత్ చుకే హై తో ఇస్మే చర్చా హై జో లిబరేషన్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డర్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డర్ జో ఏక్ గృహస్థ వ్యక్తి కే జీవన్ మే కైసే ఓ సన్యాస ధర్మ మే జాయేగా కైసే అప్నే ఆప్ కో ఇస్మే ఉన్నత బనాయేగా ఇస్కే బారే మే ప్రోసెస్ బతాయే హై ఔర్ ఆప్ సబ్ భక్తగణ ఇస్ శ్లోక కో సునే హై ఔర్ ఇస్సే పహలే కయీ శ్లోక ఆప్ లోగ్ పఢ్ రహే హో సమజ్ రహే హో ఉస్మే అస్పష్ట రూప్ సే బతా రహే హై जो कैसे हमें कंट्रोल करना है माइंड को योगाभ्यास के द्वारा, कई ऐसी विधियों का वर्णन किया गया है। और आज का जो श्लोक है एवं, इससे शब्द शुरू हो रहा है। तो एवं का मतलब होता है जो पीछे बहुत सारे चीज जो बता दिया गया है, तभी तो सेंटेंस में लिखा जाता है ना इस प्रकार। अब जो व्याख्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे चीजों को बताने के बाद जो किस तरह का अभ्यास करना चाहिए अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए, भगवान में हमारा दिमाग लगे, ये संभव तभी होगा जब हम गुरु वर्ग आचार्यों के संगत में रह करके उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर में वर्णन है। और इस श्लोक के अंदर में जो सबसे मुख्य बात है वो निर्वाण शब्द पे लिया है। आप सब भक्तगण थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे भक्तगण वेट कर रहे हैं, बहुत आगे जगह है, आप लोग भक्तगण आ जाओ, बहुत सारे जगह है, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। तो कह रहे निर्वाण, निर्वाण शब्द का जो है हर कोई मीनिंग जानते, एक तरह से समझ लीजिए निर्वाण मोक्ष है ना, निर्वाण प्राप्त करना। इस जगत में, खास करके इस भौतिक जगत में, निर्वाण प्राप्त करने की सबसे बड़ी होड़ लगी रहती है, जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए किसी भी तरीके से। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? जो इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा फंसा हुआ है और इतना कष्ट अपने आप को अनुभव किया है ना, तो इस शरीर को छोड़ करके मुक्त होना चाहता है। लेकिन एक्चुअल में मुक्ति का ये अर्थ नहीं है। इसका एक्चुअल जो अर्थ है वो पद्म पुराण में भगवान शिव जी नारद जी के साथ वार्तालाप करते हैं, उसमें बताते हैं मोक्ष का क्या डिफिनीशन है। यत् साक्षात् सेवनम् तस्य प्रेम्णा भगवतो भवेत्, समोक्ष प्रोच्यते प्रागेर वेद वेदांग वेद भी। कर है जो प्रेम पूर्ण हृदय से जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात जो सेवा होता है ना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना जो अवसर मिलता है, उसी को जो वेद वेदांग शास्त्र पुराण जो विद्वान जानते हैं, उसका कहना है मोक्ष का डिफिनीशन यही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात चरणों की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लेना, यही है मोक्ष की प्राप्ति करना। अच्छा, शरीर त्याग करने के बाद हम कहीं मुक्त हो जाएं और हमारी कोई सेवा ना हो, तो मुक्त होकर के किसना रहेगा? अब श्रील प्रभुपाद जी कई जगह बताए, ब्रह्मलोक जो सबसे इस जगत का हाईएस्ट प्लैनेट है, उसमें जाने के बाद भी व्यक्ति की पुण्य जब खत्म हो जाती है तो नीचे आना पड़ता है, धक्के मार करके उनको धरती पे लाया जाता है। तो इसलिए ऐसे जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे भगवान की सेवा करें। कोई किसी बंद कमरे में ऐसे जगह बंद कर दिया जाए व्यक्ति को और उससे कोई बात करने के लिए ना आए, कितना मन लगेगा उसको, कुछ नहीं मिले। जब भगवान की सेवा मिलेगी, आपसे कोई बातचीत करने वाला होगा, तो बड़ा ही आनंद आता है। और सर्वोपरि आनंद तब आता है जब भगवान की सेवा मिल जाए, वैष्णवों की सेवा मिल जाए। तो ये मोक्ष का सही वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये है, विष्णुरनुचरत्वं हि मोक्षमाहो मनीषिणां न दास्यं परेशस्य बन्धनं परिकीर्तितम्। कारण भगवान विष्णु के अनुचर होने को ही एक तरह से मनुष्यों ने, जो इस जगत के विद्वान लोग हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की दासता के अलावा किसी और देवी देवता की दासता को स्वीकार करता है ना, तो वो फिर उनका मोक्ष का ये डिफिनेशन नहीं है। कल प्रभु जी बहुत अच्छा बताए, भक्ति केवल और केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, देवी देवता की भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति केवल और केवल श्री कृष्ण भक्ति। तो यहां कह रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण की दासता अगर जो व्यक्ति स्वीकार कर लिया ना, वही व्यक्ति को बंधन का कारण नहीं बनता, बंधन में नहीं फंसता वो व्यक्ति, लेकिन भगवान को छोड़ करके अगर किसी दूसरे की शरण में अगर कोई गया ना तो उसका बंधन का कारण होता है। श्रील प्रभुपाद जी पहला ही लाइन लिखते हैं, निर्वाण का अर्थ भौतिक इच्छाओं से रहित होना। तो आज का प्रभुपाद का कोट किसी को याद है? आज का कोट ही यही था। आज जो मॉर्निंग में अनाउंसमेंट हुआ था, जो जीव कभी भी भौतिक इच्छा से रहित नहीं हो सकता। अगर जीव भौतिक इच्छा से रहित हो जाएगा तो जीव जीव नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। और जब इस शरीर में जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, तो ये चेतन है, तो इस जीव का फिर क्या वजूद? कुछ भी नहीं। इसलिए कर लिखा है ना, काठ पत्थर हो जाएगा। तो जीव कभी भी इच्छा के शून्य नहीं हो सकता। केवल और केवल भक्तों के माध्यम से, गुरु वैष्णव आचार्यों के शास्त्रों के अनुसार रह करके अपनी इच्छा का डायरेक्शन चेंज करना है। केवल और केवल इच्छा का डायरेक्शन चेंज करना है। इच्छा को हम नहीं रोक सकते। काम, क्रोध, लोभ, मदमोह, मात्सर्य, सभी को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ये दुश्मन है हमारे थी, लेकिन जब व्यक्ति इसको भगवान की सेवा में लगा देता है ना, इसी छह दुश्मन को, तो फिर उसके दोस्त बन जाते हैं। ये इंद्रियां कितनी बलवत्ती है। इंद्रियां हमारे दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन दोस्त कब होता है? जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने अनुसार रखते हैं। तो इस जगत में जब व्यक्ति माया में फंसता है ना, तभी जो है ना उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है। कहने ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया थारे झपटिया धरे। तो ये जो माया है, माया आखिर है क्या? कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है ना, वही माया है। माया जो है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण अगर इस तरफ हैं और उनके तरफ हमारा मुख अगर है तो हम उनके तरफ देख रहे हैं, तो हम कृष्ण के सामने, हमें माया को टच नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही हम भगवान के विमुख हुए, इनके पीछे माया जो है रहती है पड़ी हुई, तो उनके जैसे भगवान की शरणागत छूटा, हमें माया तुरंत दबोच लेती है। वो इसीलिए बैठी रहती है, उनका यही काम है। आप लोग बौद्ध धर्म की फिलॉसफी को जानते होंगे। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या कहती है? जो इच्छा रहित हो जाओ। इच्छा रहित होकर के क्या रहा जा सकता है? कभी भी नहीं। इच्छा से, इच्छा के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। इच्छा हमेशा व्यक्ति के अंदर में रहता है। देखिए, कोई जैसे पानी है, पानी की स्वभाव क्या हो है? हर वस्तु का एक स्वाभाविक नेचर होता है। पानी का स्वभाव है तरलता, है ना, तरलता स्वभाव। अग्नि की स्वभाव है जलाने का, और चीनी का स्वभाव है मिठास। तो ये तीनों चीज अपने स्वाभाविक स्थिति से अगर हट जाएगा तो चीनी चीनी रहेगा क्या? पानी पानी रहेगा? और अग्नि क्या? अग्नि को कोई अग्नि बोलेगा? तो व्यक्ति जो जीव है, वो तटस्था शक्ति के अंतर्गत रह करके भगवान की जो राधा रानी दैवी प्रकृति के अंदर में, भगवान की सेवा में, राधा रानी की दासता को स्वीकार करने के लिए अपने आप को जीवन भर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो व्यक्ति को वो तटस्था शक्ति यानी माया के चक्कर में नहीं जाना है। हमें रहना है तटस्था शक्ति एक मार्जिनल पॉइंट पे, जो हम भगवान की, श्रीमती राधा रानी की सेवा में हम नियोजित हो सके। लेकिन माया में फंस करके व्यक्ति वो उसमें फंस जाता है। तो कह रहे हैं, देखिए भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें इस बात को बता रहे हैं। तेजो बारी मृदाम यथा, और हम शब्द नहीं लेते हैं, इसका एक शब्द लेता हूं, तेजो बारी मृदाम। तो कह रहे हैं, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, जो माया है ना, वो माया क्या करती है? व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति को भुला देती है। तो कह रहे हैं, तेजो बारी मृदा, अग्नि में जल का भान होना है। अग्नि, लेकिन व्यक्ति को पता चलता है ये जल है। जैसे दुर्योधन को पता चला था ना, आप लोग कथा पता ही है। तो अग्नि में जल का भान होना, जल में स्थल का भान होना, ये किसका प्रभाव होता है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति माया का काम है। तो लेकिन हमें इसमें नहीं रहना है। जीव का स्वाभाविक, जैसे जीव का स्वाभाविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। समझ रहे ना, ये जीव का स्वरूप है। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं, जैसे जल है। तो जल की अस्वाभाविक स्थिति क्या होती है? बर्फ बन जाना। है ना, जल को जब बहुत ज्यादा गर्म करिए, ठंडा कर दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है, या जल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जल की खत्म माने अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसका जल की स्थिति रखने के लिए उसको जल ही रहना पड़ेगा। जीव है तो जीव में जीव की स्थिति क्या रहेगी, जो भगवान की सेवा में नियोजित होना, अपने आप को दास के रूप में भगवान को हमेशा सेवा करते हुए रहना, प्रेममयी सेवा, ये नहीं कि हमारे ऊपर धर। इसी बात को विदुर मैत्रेय के संवाद में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप जब थर्ड कैंटो में जाओगे और उनका पांचवा अध्याय का दूसरा श्लोक में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो कर्मानि करोति लोको न ते सुखवान्न दुपारमं वा विन्दे तथस्तैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदन्। जीव इस जगत में सुख प्राप्ति करने के लिए बहुत योजना बनाता है, एक योजना फेल हो गया दूसरा योजना आ जाता है, ऐसे कई योजना बनाता है, लेकिन भगवान की इच्छा अगर दूसरा है, सुख की प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति सकाम कर्म में फंस जाता है। माया का मेन काम होता है व्यक्ति को सकाम कर्म में फंसाना, और सकाम कर्म में जब व्यक्ति फंस जाता है ना, तो सकाम कर्म में चाहे व्यक्ति पाप करे या चाहे पुण्य करे, उसका रिजल्ट आएगा और वो व्यक्ति फंसता जाएगा। भौतिकतावादी जो व्यक्ति होता है, प्रभुपाद जी आज सुबह बता रहे थे, जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है इसी कर्म बंधन में फंसता जाता है। इसलिए हमें माया के चक्कर में फंस करके कर्म बंधन में नहीं फंसना है, हमें अकर्म की स्थिति में आना है और अपनी स्थिति को पहचानना है, हम क्या है उसको पहचानना है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम फिर भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हमें केवल और केवल भगवान पे विश्वास करके, भगवान का शरणागत होकर के, भगवद गीता का अंतिम श्लोक ये जो निचोड़ क्या बताती है, कंक्लूजन सर्वधर्मान परित्यज्य ना, भगवान का कहने का मतलब हमें भगवान का शरणागत होना है, हमें भगवान पे विश्वास करना है, हमें भगवान का भक्त बनना है। इसलिए ना कृष्णदास बिंदास रहता है और मायादास उदास रहता है। इस जगत में जितने भी लोग हैं जो भौतिक प्रकृति माया के चपेट में है ना, योजना पे योजना बना करके फेल होता रहता है, लेकिन उस सुख की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा उदास रहता है। गरीबी में व्यक्ति का जन्म होता है, गरीबी में मृत्यु हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त बन गया ना, देखो भक्ति भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, धन धान्य लहलाता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए तो कृष्णदास बिंदास रहता है और मायादास हमेशा उदास रहता है। भगवान पे हमें विश्वास नहीं होता है। देखिए हम नाई पे विश्वास कर लेते हैं, जो नाई के यहाँ जब जाते हैं, हम बाल कटाते हैं, उसके पास कितनी तेज अस्तूरा रहता है, उसको हम अपना गर्दन अपना जीवन संभाल दे देते हैं, भैया लो और एक ही बार यहाँ चलाएगा, जय श्री राम हो जाएगा, हाँ समझ रहे। लेकिन नाई पे विश्वास कर लेते हैं, घर में बाई को रखते हैं उस पे विश्वास करते हैं, लेकिन अपना कन्हाई पे विश्वास नहीं करते, समझ रहे ना, भाई पे विश्वास करना है, कृष्ण कन्हैया पे विश्वास करना है, तभी जाकर के हमें जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। अगर सच्चा सुख की प्राप्ति करना है ना, तो केवल और केवल कृष्णार चरणारविंद
भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद।
केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भजन जब करेंगे ना, तभी हमें अभय की प्राप्ति होगा। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, केवल और केवल कृष्ण ही मुक्ति दे सकता, कोई देवी देवता राष्ट्र समाज मोदी जी वही मुक्ति दे सकते, समझ रहे ना। केवल और केवल मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की ही भजन करना पड़ेगा। सच्चा सुख अगर मिलेगा तो केवल और केवल किस में, कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु महाराज एक बार एक छोटा सा भजन गाए थे, सुनिए।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में जिहुआ पे तेरा नाम रहे तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे जिहुआ पे तेरा नाम रहे तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे तेरी याद में आठो याम रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में तेरी याद में आठो याम रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण में ही हमें क्या मिलेगा सच्चा सुख मिलेगा। हमारी स्थिति एक जीव की यही स्थिति है जो हमारे आठों याम अष्टयाम होता है ना 24 घंटा में अष्टयाम होता है एक याम 3 घंटे का होता है करे 24 घंटा में हर पर हर सेकेंड अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को अगर याद कर रहे हैं ना तो यही जीव की सही स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इसको भूल करके कृष्ण बुलिया जीव अगर जैसे ही कृष्ण को भूला तो दूसरा चीज के चक्कर में पड़ते ही हम माया के चपेट में आ जाते हैं हम अपने परम गंतव्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए केवल और केवल देखिए सच्चा सुख भगवान के चरणों में मिलेगा। भगवद गीता के कंक्लूजन है जो हमें भगवान पे भरोसा करना है। जब हम भगवान की जीव जब भगवान का शरणागत हो जाता है ना तभी उसको एक्चुअल सुख की प्राप्ति होती है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गो षड्विधा शरणागति। वहां पे जो भगवद गीता के अंदर में जो शरणागति है ना तो शरणागति को श्रील सनातन गोस्वामी पाद हरि भक्ति विलास में बहुत ही अच्छी तरह शरणागत के 6 पॉइंट है। व्यक्ति शरणागत कब होता है तो इसमें से मुझे एक पॉइंट लेना है जो रक्षिष्यति इति विश्वास हो भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये पूर्ण फेथ होना है। किसी का फेथ भगवान पे विश्वास होना। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं प्रधानमंत्री के पास जाते हैं अपने गांव के मुखिया के पास जाते हैं सब कुछ करने के लिए लेकिन भगवान का शरणागत नहीं होते। 10वें स्कंद में जब आप देखोगे जब वसुदेव जी ने नंद बाबा को ये बोल दिया जो संत अभी जो है विपदा आने वाली है ब्रज में तो जैसे ही ये बात पता चला कि नंद बाबा भगवान के शरण में एकदम समाहित हो गए भगवान का ध्यान जब व्यक्ति को कष्ट का अनुभव हो ना भगवान के शरण में जाना चाहिए। देखिए इलाज तो कराना ही चाहिए इलाज नहीं कराएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा है ना तो इलाज कराना चाहिए लेकिन डॉक्टर भी ना भगवान के वो डॉक्टर को भी पूछोगे तो वो भी बोलता है जो भगवान जाने समझ रहे ना। तो भगवान का शरणागत पूर्ण फेथ होकर के पूर्ण विश्वास पूर्ण कन्विक्शन के साथ भगवान में विश्वास रख करके रक्षिष्यति इति विश्वास। एक बच्चा अपने माता के गोद में बैठा रहता है कितना सुकून से रहता है ना उसे किसी भी तरह का दुनियादारी का परवाह रहता है। तो हम सब भगवान के जब शरणागत हो जाएंगे ना तभी जाकर के हम सुकून से जिंदगी जी सकते हैं भगवान का भजन कर सकते हैं ना। वो व्यक्ति इस जगत में फंस जाता है। भगवान को साइड करके सभी की अहमियत देना सभी को वैल्यू देना लेकिन भगवान को साइड में कर देना। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस् सखखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक को हम लोग भूल ही जाते हैं।
सब कुछ भगवान है, माता भी पिता भी सब कुछ, सारे कुछ कुछ का श्रेय स्रोत जो है ना केवल और केवल भगवान है। अगर कोई व्यक्ति चाहे जो मैं इस ओरिजिनल माता पिता को छोड़कर जो वर्तमान में जो माता पिता है ना, तो उसको तो हम फिर हमारा जीवन जो है दो ही रिश्तेदार पैदा करना है,
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक तो श्याम सुंदर दूजा राध्या रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
हमारे दो ही रिश्तेदार है इस जगत में, दो रिश्तेदार हमारा नहीं है, एक तो हमारे श्याम राधा श्याम सुंदर, इनके अलावा इस जगत में कौन रिश्तेदार हो सकता है। देखिए सबसे सन्निकट में हमारे अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, लेकिन हम सबको याद करते हैं और उन्हीं को भूल जाते हैं जो सबसे नजदीक बैठा हुआ है, सबसे में हमारा हितेशी है, होक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के, भूत मतलब भूत प्रेत वाला नहीं, सभी जीवों के जो सन्निकट में है हृदय में बैठा हुआ है यही महात्मा भगवान, और उनको भूल करके हम किसी और को याद करते हैं, अपनी पत्नी को अपने बच्चे को याद करके हम अपना जीवन गुजार देते हैं। तो कह रहे हैं केवल और केवल अगर सच्चा सुख मिलेगा ना तो केवल भगवान के चरण में, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये सब चीज भगवान के सर पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण भक्ति के साथ इस विश्वास में रहना जो भगवान हमारे पूरा विश्व, ऐसा फेथ होना चाहिए ना जो हम भगवान की भजन कर रहे हैं, जैसे हम लोग माला कर रहे हैं तो गुरु के निर्देशन में आदेश जो मिला है उसको पूर्ण विश्वास के साथ हमें करना चाहिए, हमें नित्य मंगला आरती में उपस्थित होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके मंगला आरती आना चाहिए, और गुरु के जो आदेश हैं शास्त्रों के जो आदेश हैं 16 माला का नित्य भक्तों के बीच में बैठ करके जप करना चाहिए, ये हमारे गुरु का आदेश है, गुरु के द्वारा जो निर्दिष्ट सेवा है उसको करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, श्रद्धा, ये देखिए भक्ति जो साधन भक्ति करके, यहाँ पर मैं कई तरह के योग करे रेचक कुंभक ऐसे कई सारे चीजों का प्रयोग किया गया है, ये सब क्या करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके भगवान के में फिक्स करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन हमें एक वैष्णव जो है क्या करता है इन सब चीजों में नहीं फंसता, वो केवल और केवल भगवान की भजन करना शुरू कर देता है तो एक चीज करेगा, करें बाय वन गेट अनलिमिटेड फ्री, समझ रहे ना, आपको सेल लगेगा तो मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा ना, यही अभी दीपावली आने वाले तो यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बाय वन गेट अनलिमिटेड फ्री, केवल एक भक्ति करो उसके बाद सब कुछ मिलेगा, जो चीज चाहिए वो सब कुछ मिलेगा केवल और केवल भक्ति करने से। तो शुद्ध भक्ति से के भगवान पे निर्भरता ये विश्वास आता है, भगवान देखो व्यक्ति भजन भी कर रहा है जप भी कर रहा है पाठ भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है भगवान पे। भाई भगवान का जब विश्वास नहीं है तो ये सब चीज निरर्थक हो जाएगा। तो सबसे पहला है शरणागति, सरेंडर, इंग्लिश में वर्ड कभी कभी बहुत अच्छा है, सर अंडर कर दो, समझे ना, मैंने अब वो ऊपर वाले जो करेंगे उसका हिसाब से चलना पड़ेगा, सरेंडर का मतलब यही होता है, यानी कि अपना मनमानी चलेगा, सरेंडर का मतलब यही होता है। कह रहे अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब क्या होता है, नो अन्य, मन मना भव मद भक्तों जो बोलते हैं अनन्य भक्ति, ये शुद्ध भक्ति का, करे अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उन्हीं शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हीं का सब कुछ पूरा करते हैं जो भगवान की अनन्य चेतन है, अनन्य चिंतन करता है। अब कोई ऐसे भी व्यक्ति होता है भगवान कृष्ण की भी उपासना करता है, अभी देवी दुर्गा की उपासना शुरू हुई ना उसमें भी व्रत रखेगा, भाई इनको भक्त लोगों को जाके बोलते एकादशी व्रत कर लो तो उसमें उसको नानी याद आ जाती है, लेकिन ये देवी दुर्गा के कई सारे उपासना ये सब सब शुरू कर देगा। घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनाएगा ये 10 दिन, समझ रहे हैं? दूसरे बर्तन में खाएगा, लेकिन उसको बोल दो जो आप एकादशी का व्रत कर लो, कुछ नहीं भाई। व्रत जो है, व्रतों में सबसे बड़ा जो राजा है ना, वो केवल और केवल एकादशी व्रत है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर ले ना, तो ये दुनिया के जितने भी व्रत है ना वो साइड कर दो, किसी को करने की जरूरत नहीं है। यहां तक मैं बोलता हूं, माता लोग यहां पे है, कई माताएं करवा चौथ करते होंगे ना, अगर कोई माता अगर कोई व्यक्ति एकादशी करता है ना, और वो माता अगर करवा चौथ भी नहीं रखता जो पति की रक्षा के लिए ना, तो उसके पति का कोई बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि एकादशी रक्षा करेगा। एकादशी में इतनी पावर है ना, वो सारे व्रतों की राजा है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है एकादशी के व्रत करने मात्र से। लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए जो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अनन्य चिंतियंतो माम, किसी और पे विश्वास न करना, केवल भगवान पे विश्वास करके जो ये हमारी रक्षा करेंगे, तभी जाकर के सारा काम होगा। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 6ठे अध्याय में बोलते हैं भगवान, ये तु सर्वाणि कर्वाणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण में अर्पित कर देता है, इसका क्या मतलब हुआ? जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है ना, कर्म से हमें जो रिजल्ट होता है, उसको भगवान के चरणों में समर्पित करना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सब भगवान को समर्पित कर देना, इससे कर्म बंधन नहीं लगेगा। फिर इसी को बोलते हैं सन्यासी। तो कह रहे, जो व्यक्ति समस्त कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करके अविचलित भाव से भगवान की जब सेवा उपासना करता है ना, और भक्ति भाव से भगवान की केवल और केवल पूजा करता है, करे अनन्य एव योगे न माम ध्यायन्त उपासते, करे ना मत परा, मुझ में भक्ति, मुझ में एकदम पूरा का पूरा कंसंट्रेट करता है अपने आप को। तो ये जब चीज होता है ना, तो उस व्यक्ति के जिंदगी में क्या होता है, उसकी जिंदगी जो है ना, शीघ्र भगवान उसका उद्धार करते हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं, उपमा दिए, किसी को याद है? इसी श्लोक के 9.12.6 में, 12 अध्याय का 6ठा श्लोक में एक बहुत सुंदर भगवान बात बोलते हैं। कितना भी पावरफुल व्यक्ति, कितना भी सुंदर तैराकी व्यक्ति होगा, तैराकी समझते हैं ना, जो तैरता है या जो बहुत अच्छा बोट करे, कह रहे अगर कितना भी कुशल तैराकी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति समुद्र में फंस गया है, समुद्र में चला गया है, तो कितनी भी कुशलता से वो तैराकी करेगा ना, तो समुद्र से बच नहीं सकता वो व्यक्ति। वैसे ही हम सब जीवात्मा इस जगत में भव सागर में फंस गए हैं। कितनी भी एक्सपर्टीज हम सब अपना प्रयोग करेंगे ना, अपना दिमाग बुद्धि लगाएंगे ना, तो इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। जैसे वो समुद्र में वो कुशल तैराकी अपना जीवन नहीं बचा सकता, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर से आएगा और उसको रस्सी देगा और रस्सी पकड़ के ऊपर हो गया, तो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति की जान बच जाएगी। यही एक तरीका है जो उसको खींच करके भगवान के शरणागत, जब व्यक्ति इस भवसागर में फंस जाता है ना, तो इस भवसागर से निकालने के लिए केवल और केवल दो व्यक्ति हैं, एक तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर, दूसरा हमारे गुरु। यही दो व्यक्ति है, अगर उसको नहीं उठाए, नहीं खींचे भवसागर से ना, तो उसका फिर निदान नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे इस आसन पर बैठा है और इस पूरा हाथ पैर सब कुछ बंधा है, इस पूरे जगत में सबका हाथ पैर बंधा हुआ है, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकता है? क्या मदद वही कर सकता है दूसरे व्यक्ति को जिसका हाथ पैर खुला हो? तो इस जगत में हाथ पैर खुला कौन है? केवल और केवल भगवान, केवल और केवल गुरु, जो इस माया के चंगुल में नहीं है। इसलिए हमें अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा सोचना होता है, आत्म कल्याण के लिए। देखिए, हम सब कुछ का फिक्र करते हैं, सब कुछ की परवाह करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा का कल्याण के बारे में नहीं सोचते। आत्मा का कल्याण कैसे होगा हमारा, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, अपना कैसा कल्याण होगा, लेकिन दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर एक एनोलॉजी बताता हूं। 12 यात्री मिलकर के एक गांव से ध्यान से सुनिए, 12 यात्री मिलकर के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, एक बार की बात है। लेकिन बीच में नदी आ गया, जब बीच में नदी आ गया तो देखा नदी को पार करने के लिए नाव है और ना कोई पुल बना है, तब नदी कैसे पार किया जाए। तो उसमें से एक 12 यात्रियों में से एक बड़ा सयाना था, उसमें से मैंने दिमागदार आदमी था वो, तो उसने कहा क्या सोच करके, ऐसा करते हैं सब कोई एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं और मजबूती से पकड़ करके ना इस नदी को पार कर सकते हैं। तो सभी ने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद वो नदी को पार कर गया। तो जब नदी को पार कर गया ना, तो वो जो सयाना व्यक्ति है तो वो बोलता है देख लो कोई छूटा तो नहीं, तो गिनती करता है, समझ रहे ना, वो गिनती करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे भाई 11 लोग, एक तो चला गया हमारे ग्रुप में से, हाँ, फिर दूसरा सर्च को भी गिनती करता है उसको भी 11 मिलता है, तीसरा करता है उसको भी 11 मिलता है, चौथा करता है 11 मिलता है, सबको 11। अब जो है बारहों मिल करके अपने अपने एक दोस्त के डूबने के वजह से डूब गया समझ करके वो रो रहा है। तब तक एक यात्री आता है, वो नदी क्रॉस करके जब आ जाता है तो भाई क्यों रो रहे हो सबके सब, अरे भाई मेरा एक साथी डूब गया, हम सब 12 थे लेकिन एक जो है डूब गया, मिल ही नहीं रहा है। अरे 12 थे, एक नहीं 11 रह गए। तो वो व्यक्ति यात्री जो है उसने गिनती किया मन में मन, यार ये तो 12 के 12 है लेकिन ये कह रहा है 11। तो बोलता अगर मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हारे एक डूबे हुए साथी को ढूंढ दूंगा तो क्या दोगे, तो कर मैं तुमको समझ जाऊंगा तुम महान है, मैं महान है समझ लूंगा। वो सयाना व्यक्ति बोला, क्योंकि वो 12 में से सयाना था ना, तो उसने बोला जो मैं महान है, ठीक है, तो देखो मैं सबको जो है ना एक चपाट मारूंगा, तो जिसको चपाट मारूंगा वो एक बोलना, दूसरा नंबर पर दूसरा बोलना। तो ऐसे वो चपाट मार रहा था, वो एक दो